ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्सं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना दलिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस वीकली प्रोग्राम में। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे श्रीमान नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो आप सब परिचित हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो उससे पहले हम और एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, और वो है पंच तत्व मंत्र। वो भी महामंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवान के असंख्य नाम हैं, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सबसे प्रमुख है। इस हरि नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना ही कलयुग की परम सिद्धि है। सारे शास्त्रों का अध्ययन करना, सारे तीर्थों का भ्रमण करना, नाना प्रकार से अलग अलग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना, या बहुत अधिक तपस्या करना, दान आदि देना, इन सब का जो अंतिम रिजल्ट कुछ है तो वो ये है कि व्यक्ति भगवान के नामों का निरंतर अपने जिह्वा से उच्चारण करे। बस इसलिए यदि व्यक्ति भगवान के नामों का अपने जिह्वा से उच्चारण करता है तो उसे ये सब बाकी चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे शास्त्रों का सार है, सारे कार्यों का परम फल है। क्या है परम फल? कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हमसे हो, और कभी भी हम अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूलें। तो यह हमसे हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ कर लिया है। हमें किसी तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोई बड़े दान यज्ञ आदि तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, नदियों में त्रिवेणी आदियों में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराधितो यदि हरि तपसः यदि किम, यदि कृष्ण की आराधना कोई कर रहा है तपस्या करने की कोई नीड नहीं है। कृष्ण की आराधना ही क्या है? सबसे बड़ी तपस्या है। कृष्ण की आराधना ही क्या है? सबसे बड़ा तीर्थों का भ्रमण है। कृष्ण की आराधना ही क्या है? हाँ, सबसे बड़ा दान करने का रिजल्ट है। तो इसी कारण से हम ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कोई सर्वसाधारण वस्तु नहीं है। ये हमें प्राप्त हो रही है, किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? इस पांच महान विभूतियों के द्वारा, और विशेष रूप से श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, जिनको क्या कहा जाता है? गौर और नितान। तो जनरली भगवत भक्ति में आने से पूर्व हमने कभी सोचा ही नहीं था या नाम भी नहीं सुना श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। लेकिन जब हम भगवान चैतन्य के अनुयायी या भक्तों के संपर्क में आते हैं और हमें तो कृष्ण और राधा, राम और सीता आदि का तो सुना है, लेकिन ये गौर और निताय क्या है? तो कई बार लगता है कि इतने सारे जोड़ी जोड़ी है भगवान की। हाँ, भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग कार्यों को संपादन करने हेतु अवतरित होते हैं। वही भगवान राम के रूप में आते हैं, लक्ष्मण उनके भ्राता हैं, त्रेता युग में अवतरित होते हैं, और रावण जैसी आसुरी प्रवृत्ति है उसको खत्म करते हैं। वही भगवान द्वापर युग में अवतरित होते हैं, कौन से रूप में? स्वयं भगवान, अपना स्वयं का रूप, कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनके संग में कौन है? संगे बलराम, बलराम आते हैं। तो कलयुग क्यों खाली रहे? कलयुग में भी तो आना चाहिए भगवान को। हमने ये तो सुना है अलग अलग पुराणों में कि भगवान कलयुग के अंतिम समय में कल्कि के रूप में अवतरित होने वाले हैं। तो लेकिन भगवान कलयुग की जो प्रथम संध्या है, प्रथम संध्या मीन्स शुरुआत का समय, ये कलयुग का शुरुआत का समय है। तो भगवान इस कलयुग के शुरुआत के समय में अवतरित होते हैं अपना स्वयं का बहुत परम करुणामय, परम दयामय ऐसा जो स्वरूप है उसको धारण करके। और वो कौन सा रूप है? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को क्यों श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कुलोचन दास ठाकुर कहते हैं, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, बाकी अवतारों के साथ संपर्क बनाए रखना बड़ा कठिनतम है। और बाकी सब अवतार जो भगवत अवतार आए थे वो शस्त्र अस्त्र लेकर आए हुए थे। इवन भगवान कृष्ण भी अयोध्या में शस्त्र अस्त्र लेकर घुमा करते थे, लेकिन कलयुगा में वही कृष्ण चैतन्य देव के रूप में आते हैं, श्रीमान नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, और कोई अस्त्र नहीं है उनके पास। और वो केवल ऐसे दयालु अवतार है कि केवल दूसरों का हित चाहते हैं, जीवों का क्या चाहते हैं? हित। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहां अमेरिका में उन्होंने एक टेम्पल में जो गौर निताय के विग्रह है, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं ना भगवान, कैसे खड़े? दोनों हाथ ऊपर करके। तो जब हम नए नए आते थे तो हम सोचते थे भगवान को तो हमने देखा है धनुष बाण लेते हुए, बांसुरी पकड़ते हुए, ये ऐसे भगवान कैसे हैं जो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं? तो इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। एक है कि पूर्ण शरणागति का जो इस सिंबल है या सिम्टम है वो दिखा रहे हैं, जैसे मूवीज में कहा जाता है ना हैंडसम, तो जो जो गुंडा है विलन है तो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है, तो मतलब उसका मतलब भी फुल्ली सरेंडर है। तो भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़कर भक्त के भाव में आते हैं और वो सिखाते हैं, सिखाय शरणागति भगतेर प्राण। एक भक्त का लाइफ क्या है? लाइफ है सरेंडर, शरणागति। या हम उपस्थित हैं या शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, गीता के सारे 700 श्लोक किसी को याद हो गए, लेकिन उसका फ्रूट क्या है? भगवत गीता क्या अध्ययन का शरणागति क्या है? इसलिए तो कृष्ण चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन क्या करो, शरण ग्रहण करो। तो यदि शरणागति की भावना नहीं आ रही है तो सारे कार्य क्या है? श्रम एव हि केवलम्, केवल हमने अपना समय का दुरुपयोग किया है। तो शरणागति की भावना बढ़नी चाहिए। तो वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और हमें क्या सिखाते हैं? सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये, सर कहां करो? अंडर करो। किसके अंडर? भगवान के चरण कमलों में। सिंपल है, दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारा जो ईगो है, क्या है हमारे पास? ईगो जाएगा तभी हम भगवान के शरणागत हो सकते। अहंकार, ये अहंकार रूपी कार हमने खरीद के रखी है, जब से जन्म हुआ है तब से, इसी कारण से हम भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हैं और अपने फॉल्स ईगो के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार का कष्ट, विपदा, स्ट्रेस, टेंशन अनुभव करता है। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सची सुत हैल जई बलराम हैल निधाय, वही यशोदा नंदन कलियुगा में सची नंदन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वही बलराम किस रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो श्री कृष्ण चैतन्य उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही जो कृष्ण है उन्होंने श्री का जो भाव है, श्री मीन्स कौन सा? उम, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, उनका भाव जिन्होंने धारण किया है, ऐसे कृष्ण श्री कृष्ण। कौन से कृष्ण? जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति धारण किया है, ऐसे कृष्णा इस संसार में आते हैं और एक विशेष कार्य करते हैं। और वो कार्य क्या है? इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों में जो सुप्त कृष्ण चेतना है उसको जगाते हैं। हमारे हृदय में, हर एक जीव के हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा है, हर एक हृदय व्यक्ति के जीव हृदय में भगवान की सेवा करने की भावना है, लेकिन अभी क्या हो गई? वो भावना ढक गई है। तो उस भावना को, उस सुप्त चेतना को जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आते हैं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य कहा जाता है। और ऐसी जब चेतना जगती है तो वास्तव में व्यक्ति दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कलियुगा में अवतरित होते हैं। ब्रजेंद्र नंदन से सची सुत हैलो जई बलराम हैलो निताय, कि वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और वही बलराम कलियुगा में नित्यानंद प्रभु है। तो ऐसे बलराम कलियुगा में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और उनका सबसे बड़ा कार्य क्या है? बलराम का सबसे बड़ा कार्य क्या है कौन बता सकता है? बलराम का सबसे बड़ा कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। वही भगवान कृष्ण जब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, तो वो बलराम है। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी बताइए कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि बहुत सारे अंतर बता सकता है। प्रभुपाद ने कहा एक ही अंतर है, केवल उनका वर्ण कलर। बलराम क्या है? गौर वर्ण के हैं और कृष्ण कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं। तो बलराम का प्रमुख कार्य है कृष्ण की सेवा करना। इसलिए कृष्ण के अल्टीमेट सर्वेंट कोई है तो बलराम है। और वही बलराम इस कलियुगा में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और उनकी अल्टीमेट सेवा वो करते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु इस जगत में आते हैं और हमेशा एक पोजीशन को लेते हैं, सेवक की पोजीशन। अभी हम सब भी जगत में जन्म लिए हैं, हम सब ने जन्म लिया तब से हमारी भावना सर्वेंट बनने की नहीं है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है कि आपको नौकर बनना है, ऐसी भावना रखता है कि अच्छे नौकर बनोगे आगे चल के? ना, नहीं। हम तो ये भावना रखते अपने जीवन में भी और जिनका हम पालन पोषण करके बड़ा करना चाहते हैं कि ये महान बॉस बने। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए संसार में हम चाहे कुछ भी बनो, इस संसार में कोई भी पद पोजीशन डिग्री आप प्राप्त कर लो, आप वास्तव में क्या हो? सर्वंत हो, नौकर हो, चाहे समाज के, परिवार के या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, हम क्या है वास्तव में? नौकर ही है। लेकिन उस नाम से हम अपने आप को पुकारते नहीं है। जैसे इस संसार में व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, वो कहेगा आजकल स्ट्रेस में हूं, टेंशन, ये शब्द हमने ढूंढ के निकाले हैं। उसे पता चलता है कि बहुत मॉडर्न है। जब तक व्यक्ति के पास स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होता, तब उसको लगता नहीं कि मैं मॉडर्न नहीं हूं। तो कितना मूर्खता है इस आजकल के समाज में, सभ्यता में। तो इसी कारण से हमें वास्तव में सेवक बनना ही है। तो किसका बनना चाहिए? कृष्ण का। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कुछ लोग इस संसार में है, उन्होंने मान लिया है, केह माने केह ना माने सब तार दास। कुछ लोग माने या ना माने, सब किसके दास है? कृष्ण के। तो अल्टीमेटली हमें अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस में एक ही चीज को रियलाइज करना है और वो वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। और वो क्या है? हे भगवान, आप स्वामी हो, आप प्रभु हो और मैं क्या हूं? आपका एक सेवक हो, तुच्छ नगण्य दास। इसी भावना को, इसी चीज को अनुभव करना ही सेल्फ रियलाइजेशन है और कुछ नहीं है। इसी भावना को हम अनुभव करते हैं तो वास्तव में हमारा हृदय सर्वाधिक दिव्य आनंद से भर उठता है और हम वास्तव में नित्यानंद प्रभु के समान नित्य शाश्वत अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु या बलराम कृष्ण के प्रमुख सेवक हैं और वास्तव में बलराम या नित्यानंद प्रभु एक गुरु तत्व है। हाँ, भगवान के जो सेवक है सर्वप्रथम वो आध्यात्मिक गुरु है, और गुरु का कर्तव्य क्या है, जो भी उनके संपर्क में आता है उनको कृष्ण की सेवा सिखाना, ये नहीं कि अपनी सेवा में लगाना, या ये नहीं कि आप भी भगवान बन जाओगे। आजकल के सो कॉल्ड गुरुज हैं, वो कहते हैं आप प्रैक्टिस करो, एक समय आएगा आप अनुभव करोगे, जो वो है ना, अभी वो बोलेंगे नहीं वो कौन है, और लोग भी इतने मूर्ख हैं, कभी पूछेंगे नहीं उसका नाम क्या है, वो है हाँ, कोई है निराकार पर ब्रह्म जो दिखता नहीं है। अरे बाबा उसका नाम लिखा हुआ है शास्त्रों में, कभी उसके बारे में जानो, पूछो, समझो। तो कहते वो जो है आप भी वही बन जाओगे। तो इस प्रकार से लोगों को ये सब चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, तो लेकिन ये क्या है, सब झूठा प्रचार है। तो जो आध्यात्मिक गुरु है वो एक ही चीज सिखाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को सर्व कर रहे हैं, तो वो सारे जीवों को कृष्ण की सेवा ही सिखाते हैं, और यही भगवान की अल्टीमेट इच्छा है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूं। तो पिता चाहता है कि हर एक जो पुत्र है मेरे पास रहे सुव्यवस्थित रूप से, लेकिन कुछ ऐसे पुत्र होते हैं जो पिता से अलग होकर सुखी रहना चाहते हैं, उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, गुरु हैं, वो ये कार्य करते हैं कि ऐसे जीवों को जो भगवान से अलग होकर अत्यधिक कष्ट उठा रहे हैं उनको वापस कृष्ण के चरणों में शरणागत कराते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का जो जन्म है, उनके जो आज के दिन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, जैसे हम कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा रानी का क्या मनाते हैं, राधाष्टमी, भगवान राम का रामनवमी, सीता देवी का सीता नवमी, तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा है फाल्गुन, जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी। आज क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी। आज के दिन ही श्रीमान नित्यानंद प्रभु इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। अभी भगवान के लिए ही केवल ये शब्द यूज होता है जयंती, जयंती उनके लिए शब्द है, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते हैं, ना अपने शरीर को त्यागते हैं, ना जन्म है ना मरण है। लेकिन आजकल हम जो सर्वसाधारण जीव हैं उनके लिए ये शब्द यूज करते हैं। इसी कारण से जब अर्जुन ने पूछा है भगवान आप तो कहते हो कि आपने ये जो भगवद गीता का नॉलेज सूर्यदेव विवस्वान को दिया था लाखों करोड़ों साल पहले, लेकिन मैं देख रहा हूं आप तो अभी अभी जन्मे हो, आप और मैं हम बचपन के फ्रेंड हैं, कैसे ये संभव है। भगवान कहते हैं बहुने में व्यतीताने जन्माने तवच अर्जुना, कि हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तान्य हम वेद सर्वानी नाहम ते, वो कहते कि उन सारे जन्मों को मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। क्यों ऐसा, क्योंकि भगवान को शरीर बदलना नहीं पड़ता है, और जो जीव है उसको हमेशा शरीर बदलना होता है, उसके लिए जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, लेकिन भगवान के लिए नहीं है। इसी कारण से भगवान जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको अजन्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, अजन्मा। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, इसलिए उनकी तुलना सूर्य से की गई है। सूर्य प्रकट होता है पूर्व दिशा में और बाद में अस्त होता है, ऐसे नहीं कि सूर्य ने आज जन्म लिया और आज सभी अभी सूर्य मर गया है, ऐसे नहीं। अस्त और उदय, तो उसी प्रकार से भगवान, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग में जो साक्षात कृष्ण है, जय कृष्ण से ही गौरव, जो जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, और जो बलराम है वो कलियुगा में 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु के रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे, कहा पूर्व बंगाल, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 1474 में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था एक चक्रा ग्राम, कौन सा ग्राम, एक चक्रा, अभी उस गांव का नाम एक चक्रा ग्राम था, वहां एक स्थान है गर्भवास, जहां नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था, और उनके पिता का नाम था हड़ाई ओझा और उनके माता का नाम था पद्मावती। जैसे बलराम के माता और पिता कौन है, रोहिणी और वसुदेव, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले में भी 12 साल या कुछ साल पहले नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था, बलराम भी कृष्ण से पहले प्रकट हो गए थे, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु से पहले हड़ाई पंडित जो एक ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी थी पद्मावती के गर्भ से नित्यानंद प्रभु अवतरित होते हैं एक चक्र ग्राम। एक चक्र ग्राम बहुत सुंदर स्थान है, उसका नाम एक चक्र इसलिए पड़ा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय दुर्योधन भीष्म के बहुत पीछे लगा, आप तो हमारे ओर के योद्धा हो लेकिन आप कुछ खास युद्ध नहीं कर रहे हो, आपका जो स्नेह है वो पांडवों के लिए अधिक है, पांडव तो अभी धराशय होने चाहिए थे, मरने चाहिए थे, लेकिन आप जानबूझ के नहीं मार रहे हो, हाँ कुछ करिए। तो भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी इसलिए उनका नाम भीष्म था, हाँ नैसर्गिक ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, तो भीष्म ने कहा कि कल मैं ऐसे ऐसा युद्ध करूंगा रणांगन में कि कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी या फिर पांडवों को मरना पड़ेगा, दोनों में से या तो पांडव मारे जाएंगे या कृष्ण को अस्त्र उठाना होगा, क्योंकि भगवान ने तो कहा था मैं युद्ध में भाग लूंगा लेकिन क्या नहीं उठाऊंगा, शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा ऐसे व्यक्ति का क्या काम मेरी ओर जो लड़ाई नहीं कर सकता, मैं उनको क्या केवल भोजन ही खिलाता रहूं महाभारत के रणांगन में, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे, कुछ काम करने वाले चाहिए। हम भी वैसे ही सोचते हैं, जब कई बार लोग साधुओं को देखते हैं तो कहते हैं काम धाम है ना इनके पास, केवल प्रसाद खाते रहते हैं, जनरली ये अंडरस्टैंडिंग है, क्या करते हैं ये लोग, लेकिन वास्तव में वो नहीं जानते हाँ कि इनके पास करने के लिए सर्वोच्च एक्टिविटी है, हाँ सांसारिक कार्यों से क्या है सबसे श्रेष्ठ कार्य है करने के लिए, जो समाज के लिए सबसे अधिक हितमय है। तो जब भीष्म दूसरे दिन बहुत तीव्रता से गए महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में, वो घमासान युद्ध करते जा रहे थे, कई सारे योद्धाओं को मारते मारते अर्जुन के सामने पहुंच गए, और भी अर्जुन को तो भीष्म जैसा योद्धा कोई नहीं है, जिन्होंने परशुराम भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं उनको हरा दिया था, ऐसे भीष्म जब अर्जुन के सामने गए अर्जुन थक गए थे, तो भगवान ने देखा कि अर्जुन अभी नहीं बच सकता, तो भगवान उतरते हैं अर्जुन को बचाने के लिए, भगवान क्या करते हैं, कुछ नहीं मिला उनको, रथ का पहिया उठाते चक्र, वो क्या कहते हैं वो विल, रथ का पहिया उठाते हैं और भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो भीष्म ये देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। भीष्म कहते यही तो मेरे परम भगवान है, यही मेरे आराध्य देव है, जिनके हाथ में रथ का पहिया है, श्याम वर्ण है जो, और जिनका पीतांबर इस तीव्र गति से मेरे ओर दौड़ रहे हैं, जो गिर गया है उनका जो ऊपरी वस्त्र है, ऐसे उनके इस सौंदर्य और इस एक प्रकार से इस चित्र को जो देख रहे थे, इस सीन को, भीष्म स्तब्ध हो जाते हैं और भीष्म रुक जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने क्या कर लिया, अपने प्रतिज्ञा तोड़ ली, फिर अभी भगवान कब तक उठा के रखेंगे उसे, है ना। जैसे एटलस के ऊपर साइकिल के ऊपर आप देखें छोटा सा चिन्ह है, उसने उठा के रखा हुआ है। तो यहां भगवान उस रथ के पहिया को उठाया है, तो कब तक उठा के रखेंगे। अभी भीष्म देखते जा रहा है, आनंद अनुभव कर रहा है, और उस समय बहुत सारे प्रेयर्स भीष्म ने की, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भागवतम में आती हैं। और फिर भगवान ने सोचा अभी छोड़ देते इसको, तो उस पहिये को छोड़ा कुरुक्षेत्र, यहाँ हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता, हरियाणा में यहां हो रहा था युद्ध, और जैसे वो पहिया छोड़ दिया वो पश्चिम बंगाल में जाके गिरा, और जाके गिरा उस स्थान का नाम क्या पड़ा, एक चक्र, क्या पड़ा, एक चक्र। और ऐसे स्थान में, ऐसे विलेज में श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि हम भी चक्र में अटके हुए हैं, संसारिक चक्र। कहते ना लोग बहुत संसार चक्र मुझे घुमा रहा है, परेशान हो, हाँ, संसार चक्र, जन्म मृत्यु का ये चक्र। तो इस चक्र से मुक्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु जैसे दया दयालु अवतार, चैतन्य महाप्रभु से भी अत्यधिक दयावान नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में अवतरित होते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, तो उस वो जो स्थान है बंगाल का, जिसको राड देश भी कहते हैं, राड देश वो स्थान होता है जहां गंगा नहीं बहती, जहां गंगा नहीं बहती वो स्थान शास्त्रों में अपवित्र माना गया है। तो राड देश जहां हमेशा सूखा और अकाल पड़ता था, लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, सब स्थान हरा भरा हो गया, सब जगह जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, भगवान की स्तुतियां करने लगे, हर प्राणी आनंदित हो गया था, हर एक व्यक्ति खुश था। और ऐसे नित्यानंद प्रभु जो इतने अधिक सुंदर थे, जिनके आंखें कमल के समान थी, और फिर धीरे धीरे जैसे वो अपनी बाल्य अवस्था में बड़े होने लगे, और नित्यानंद प्रभु की खासियत क्या है कि वो जिसके ऊपर भी अपना दृष्टिपात करेंगे, उस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता था। क्या हो जाता था? जिस व्यक्ति के ऊपर दृष्टिपात करें, ये उनकी विशेषता है। जगाए मदाए के ऊपर भी एक ही बार उनका दृष्टिपात हुआ था, जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए, एक ही बार नित्यानंद प्रभु ने देखा, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं क्या भी इन दोनों का भौतिक जीवन खत्म, क्योंकि किसकी दृष्टि पड़ गई है, नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु ने जिनके ऊपर अपना मर्सीफुल ग्लांस, कृपा दृष्टि डाली, तो समझो कि उसका भौतिक जीवन खत्म, आध्यात्मिक जीवन की वास्तव में शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जब छोटे से बालक के रूप में थे, जैसे बलराम और कृष्ण वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते थे, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की भी असंख्य लीलाएं थी। नित्यानंद प्रभु और वो कौन सी लीलाएं करते थे, कौन से खेल खेला करते थे, कृष्ण ने जो अपनी लीलाएं की हैं, वो सारी लीलाएं सारे बालक मिलकर खेला करते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु अपने बालकों के साथ खेल रहे थे, तो एक खेल खेल रहे थे, क्या कि मथुरा से कंस अक्रूर को भेजता है वृंदावन कृष्ण को लाने के लिए। तो जब ये बच्चे सारे मिलकर खेल रहे थे, कोई अक्रूर बना था, कोई रथ बना रहा था, कोई घोड़े बना था, सारे बच्चे खेल रहे थे बालक, तो नित्यानंद, और कोई कृष्ण बना था, कोई बलराम बना था, और ये जो अक्रूर है वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेके जा रहे हैं, ऐसा खेल जब खेल रहे थे तो नित्यानंद प्रभु गोपी के रूप में थे, और उन्होंने जैसे इस चीज को सोचा केवल तो बहुत अधिक रोने लगे कृष्ण के विरह में। इतना ही नहीं, सारे कृष्ण लीलाओं का वो मंचन करते थे अपने बाल्यकाल में, और भगवान के अलग अलग जितने भी अवतार हैं, इसी से तो चरित्र का विकास होता है। आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं, आजकल तो घर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं खेलने के लिए, स्क्रीन, क्या करते हैं, गेम्स, बस उनका लाइफ वही है, एक बॉक्स के अंदर देखते रहते और उसी में रम जाते हैं। तो देखा जाए तो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो इवन नित्यानंद प्रभु जब भगवान राम की लीलाएं का खेल खेल रहे थे, तो उस समय वो विशेष लीला वो खेल रहे थे बच्चों के साथ, कि जब लक्ष्मण को एक शक्ति लग जाती है जिसके कारण लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जो साक्षात लक्ष्मण है, बलराम है, तो एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक कमल का फूल लेता है और नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंक देता है, जैसे फेंका वो मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर वो गिर पड़े, अचेतन हो गए, सारे बच्चे डर गए, सांस भी नहीं ले रहे हैं, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सबको लगा कि इन्होंने क्या कर दिया है, शरीर छोड़ा है। तो उस समय एक छोटा सा दूसरा बच्चा कहता है, दूसरा बालक कहता है कि इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो जो बालक हनुमान का रोल कर रहा है उसको बोलो जाकर क्या लेके आओ, संजीवनी बूटी लेके आ जाओ और वो मुझे सुंगाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। तो सारे गांव, सारा एक चक्र के निवासी आकर रोने लगे, और उस समय एक छोटा सा बालक हनुमान के वेश में दौड़ के किसी पेड़ के पास गया, कुछ लेके आया जड़ी बूटियां, और जैसे उनको सुनाए वैसे उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे एक चक्र के निवासी सोचते थे कि ये सब कहां से सीखा, इतनी छोटी आयु में अपनी ये सारी कृष्ण लीला, राम लीला, सारे लीलाओं को कैसे, आपको कैसे इतना पता है। तो नित्यानंद प्रभु छोटे से बालक थे, वो कहते हैं ये पता होना क्या है, ये सारे मेरे ही लीला है, मैं ये सारे पास टाइम कर चुका हूं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जब छोटे ही थे, तो एक दिन, क्योंकि उनकी आयु अभी 12 साल की हुई थी, और फिर एक दिन उस गांव में एक सन्यासी आते हैं, वो सन्यासी भ्रमण करते हैं पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग तीर्थों में जाते हैं। वो सन्यासी आए हैं तो इनके जो पिता थे नित्यानंद प्रभु के, हड़ाई पंडित, उन्होंने कहा उस सन्यासी को अपने घर में इनवाइट किया कि आप आइए महोदय, आप आइए हमारे घर में प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो वो सन्यासी उनके घर में जाते हैं और पूरी रात्रि में कृष्ण के बारे में बोलते रहते हैं, हड़ाई पंडित को कृष्ण कथा सुनाते हैं, और ये कह रहे थे नित्यानंद प्रभु के जो पिता हैं, वो कहते कि कुछ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मैं एक सेवा आपसे चाहता हूं, मैं कल बताऊंगा और वो कब, निकलते समय जब मैं निकलूंगा आपके यहां से प्रसाद ग्रहण करके, तब बताऊंगे कि मेरी सेवा क्या, आप मेरी सेवा कर सकते हो। तो जब सुबह का समय हो गया तो वो जो सन्यासी हैं भोजन आदि ग्रहण करते हैं, और हड़ाई पंडित उनके चरणों के पास जाकर उनको कहते हैं कि बताओ क्या मैं आपकी सेवा करूं। तो अभी नित्यानंद प्रभु को 12 साल हो गए थे, 12 साल की आयु थी, और उस समय एक दिन उसी एज में यहां नवद्वीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ था, और जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया था उस दिन ये नित्यानंद प्रभु जोर से गर्जना किए सिंह के समान। सब जगह ऐसा वर्णन आ रहा था कि कोई ब्रह्मांड को भेदने वाली ध्वनि हो रही है। तो जब वो सन्यासी भोजन ग्रहण करता है दूसरे दिन, उनको कहता है कि आप मेरी एक सेवा कीजिए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं तो तीर्थों में भ्रमण करता हूं, अलग अलग स्थानों में जाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे संग में मैं सन्यासी हूं और मेरे पास एक असिस्टेंट होना चाहिए ब्रह्मचारी। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये जो पुत्र है नित्यानंद वो योग्य है, इसे आप मुझे दान करो, दे दो, मैं उसे लेकर जाना चाहता हूं। सोचो कितना बड़ा डिमांड है। कोई आपके घर में आ जाए हम डोनेशन तो दे देंगे, लेकिन सीधा ये डिमांड सुने कि आपके पास तो चार चार बच्चे हैं, एक बालक हमें मंदिर के लिए चाहिए, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? इम्पॉसिबल है ना। तो वहां हड़ाई पंडित और जो पद्मावती थी उनके लिए नित्यानंद प्रभु लाइफ एंड सोल, एक प्रकार से प्राण थे। एक भी क्षण ऐसा उनके लिए कठिन होता था जब वो नित्यानंद प्रभु को देखते नहीं थे, और अभी तो उनसे उनको मांगा जा रहा है। तो हड़ाई पंडित जो उनके पिता थे वो स्तब्ध हो जाते हैं और वो बोल नहीं पाते क्या करें। तो अपनी पत्नी को पूछते हैं कि ये जो सन्यासी ये मांग रहे हैं, तो पत्नी कहती है जो योग्य हो वो आपको करना चाहिए। उस समय तो वैदिक कल्चर था, लोग बहुत ये थे, स्पिरिचुअली बहुत उन्नत थे, आज जैसे नहीं। आजकल तो समाज में शूद्रों की संख्या अधिक है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, धर्म का लोप हो गया है, अधर्म क्या हो गया है समाज में, परिवार में और हर एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ रहा है। तो उस समय उनके पत्नी ने जब ये कहा तो ये आते हैं और पत्नी को कहते कि क्यों नहीं, जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के पास आए थे तो उन्होंने राम को मांगा था, तो दशरथ ने क्या किया, राम को दे दिया बड़े कार्य के लिए। तो फिर वो उनको दे देते हैं उस बालक को, और बहुत एक प्रकार से दुख भी हो रहा था उनको, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनसे दूर जा रहे थे और वो सन्यासी बहुत आदर के साथ नित्यानंद प्रभु को वहां से ले जाते हैं। और निकलने से पहले नित्यानंद उस सन्यासी ने ये जो पद्मावती है नित्यानंद प्रभु की मदर, उनको ये कृष्णा के विग्रह दिए जिनका नाम था मुरलीधर। वो विग्रह दिए इतने छोटे से, आज भी आप जाते हो एक छतरा विलेज में वो विग्रह है। जैसे उस मुरलीधर कृष्ण को उन्होंने देखा उनकी माता ने, तो नित्यानंद प्रभु का ही जैसा उनका जो फेस है वो प्रकट हो रहा था, और वो जो ब्राह्मण है छोड़कर चला जाता है, उनको लेकर चला जाता है वो सन्यासी। तो जैसे वो सन्यासी निकल रहा था, सारा एक चतरा विलेज दुख के महासागर में गिर पड़ा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे वृंदावन में कृष्ण से हर एक व्यक्ति अपने बच्चों से अधिक कृष्ण और बलराम से प्रेम रखते थे, यही वृंदावन कॉन्शियसनेस है। वृंदावन क्यों ग्रेट है, वृंदावन के लोग क्यों महान है, क्योंकि उनको अपने पुत्र आदि से बढ़कर कृष्ण और बलराम से प्रेम है। उनकी खुशी के लिए है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनका लाइफ कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए है। तो उसी प्रकार से एक चक्रा में जो भी लोग थे वो नित्यानंद प्रभु से सर्वाधिक प्रेम रखते थे, अपने पुत्रों से भी अधिक। तो सारा विलेज इकट्ठा हो जाता है और हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जैसे कि मूर्ति खड़ी हो, केवल आंसू बह रहे थे। और फिर सामने देखा सन्यासी ले जा रहा है, हर एक व्यक्ति एक स्टैचू के भांति एक स्थान में स्तब्ध होकर खड़ा है, और अचानक वो उनको बाह्य अवस्था आती है तो वो दौड़ने लगते उस सन्यासी को ढूंढने। हर एक व्यक्ति सोच रहा था कि नित्यानंद को वापस लाओ और उस सन्यासी को बोलो कि मेरे बच्चे को ले जाओ, लेकिन किसको छोड़ो? नित्यानंद प्रभु को। यही भगवत प्रेम है, भगवान से सर्वाधिक प्रेम, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि हम अपने जीवन में प्रेम ढूंढ रहे हैं और प्रेम ही हमें आनंद या सुख प्रदान करता है। तो जब वो सन्यासी उनको ले जाता है तो सबसे अधिक दुख किसे हो रहा था? उनके जो माता पिता हैं, हडाई पंडित और पद्मावती, उनके विचार में उनके पिता 3 महीने कुछ भी नहीं ग्रहण करते और फाइनली अपना देह त्याग कर भगवान का जो वैकुंठ धाम है वहां गमन करते हैं। तो यहां देखें, सब दुखी थे लेकिन एक को बहुत सुख महसूस हो रहा था। किनको आनंद आ रहा था? नित्यानंद प्रभु को। किसे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उनका नाम क्या है? नित्यानंद। क्योंकि नित्यानंद राम ये भी उनको कहा जाता है, उनका निक नेम है निताय। क्या नेम है? पूरा नाम है निताय बंडोपाध्याय। जैसे कृष्ण का ये तो सारा एक प्रकार से देखा जाए भौतिक नेम से, लेकिन उनका जो सरनेम मुखर्जी जनरली कहते हैं, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु अवतरित होते हैं और वो सोच रहे थे कि घर में थे 12 साल की आयु हो गई, उन्होंने सोचा कब मैं बाहर निकलूं, मेरा तो आविर्भाव हुआ है चैतन्य महाप्रभु के साथ सेवा करकर सारे बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, और या मैं घर बैठकर क्या कर रहा हूं, है ना? जैसे दिसंबर का महीना आता है तो भक्त लोग कहां निकलते हैं? पुस्तकें बांटने के लिए बाहर। घर में बैठेंगे तो पुस्तक वितरण नहीं होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा मैं यहां बैठा रहूंगा मेरे घर में एक चक्रा में, तो इस संसारिक जीवों को कौन कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा, मुझे निकलना चाहिए। तो एक बहाना उनको मिला। जैसे वो सन्यासी घर आया और उसने डिमांड की तो बहुत खुश हो रहे थे, और 20 साल तक अगले जो 20 साल हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। वहां से वो निकल पड़ते हैं गया, प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा। मथुरा में आकर विश्राम घाट में जाते, स्नान करते हैं, वहां से वृंदावन जाते, 12 वनों का भ्रमण करते हैं और गोकुल जाते हैं जहां बलराम के रूप में उनका द्वापर युग में जन्म हुआ था। और फिर वो हस्तिनापुर आते हैं। कहां आते हैं? हस्तिनापुर दिल्ली। यहां आकर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। कौन थे भक्त? पांडव। दिल्ली में किसका निवास था? हम यहां रहते कभी पांडवों का स्मरण होता है? हाँ नहीं, हमें तो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, क्रिकेट स्टार्स, मूवी स्टार्स, उन्होंने गंद मचा के रखा है, क्या क्या करते हैं उनका स्मरण करते हैं, उनके रोज के एक्टिविटीज को अपडेट करते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि पांडव रहा करते थे यहां, हाँ कृष्ण यहां आया करते थे। मैं हमेशा कहता हूं ये हरियाणा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरि जिस रूट से आते थे, हरियाणा, इसलिए इसका नाम क्या है स्टेट का? हरियाणा। और है भागवतम में आप पढ़ेंगे तो कृष्ण का जो द्वारका से आने का जो रूट था वो हरियाणा से आता था। तो भगवान हरि यहां आया करते थे दिल्ली अपने परम भक्तों को मिलने के लिए, पांडवों को मिलने के लिए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु सब जगह भ्रमण करते हैं और फिर हस्तिनापुर से वो कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम, नैमिषारण्य, फिर साउथ इंडिया, तिरुपति, श्रीरंगम, मदुराई आदि, कांचीपुरम होते हुए वो भ्रमण करते करते महाराष्ट्र जाते हैं, जहां पंढरपुर नाम का एक स्थान है। वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां एक ब्राह्मण के घर जाते हैं और वो ब्राह्मण के घर में रहते हैं, तो उस ब्राह्मण को पूछते हैं, और वो ब्राह्मण इस मध्व संप्रदाय से दीक्षित था, लक्ष्मी तीर्थ का शिष्य था। हाँ, इस संप्रदाय में गीता के शुरुआत में पढ़ोगे ना परंपरा, उसमें एक नाम आता है लक्ष्मी तीर्थ। तो पंढरपुर महाराष्ट्र में, जैसे यूपी में वृंदावन है, और राजस्थान में जैसे नाथद्वारा है, है ना, हर स्टेट में कुछ ना कुछ विशेष स्पिरिचुअल प्लेस है। तो वैसे ही महाराष्ट्र में पंढरपुर है जहां भगवान विठ्ठल निवास करते हैं, कृष्ण है उनका नाम वहां विठ्ठल है। तो वहां जब पहुंचे तो उस ब्राह्मण को पूछा तो ब्राह्मण ने कहा मैं तो लक्ष्मी तीर्थ का शिष्य हूं और मेरे जो गुरु हैं अभी आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो नित्यानंद प्रभु उन्हें कहते हैं कि मैं यहां आया हूं पंढरपुर में, आप किसी को मत बताना। और ये भगवान विठ्ठल के सामने जाते हैं, नृत्य करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं और चुपके से एक स्थान में निवास करते हैं। तो ये जब महान उस समय के गुरु लक्ष्मी तीर्थ वहां आते हैं, उस ब्राह्मण के घर में रहते लक्ष्मी तीर्थ ने कहा कि मुझे लगता है कि इस स्थान में एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति का आगमन हुआ है पंढरपुर में। उस ब्राह्मण ने रिवील नहीं किया, लेकिन जैसे लक्ष्मी तीर्थ उस रात्रि में श्रीमद भागवतम से कृष्ण लीलाएं पढ़ रहे थे और जब वो सो गए, इसलिए प्रभुपाद ने कहा हर एक भक्त को रात्रि में सोने से पहले कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आपको ड्रीम्स भी कैसे आएंगे, कृष्ण के बारे में, चाहे आप दिन में हो या रात्रि में सदैव भगवान का स्मरण कर सकते हो। तो जब उन्होंने भागवतम से कृष्ण लीलाएं पढ़ी और अब जो वो सो गए लक्ष्मी तीर्थ, तो उनको स्वप्न में बलराम आते हैं और बलराम आकर कहते हैं कि हे लक्ष्मी तीर्थ, यहां एक अद्भुत सन्यासी आया हुआ है, अद्भुत एक सन्यासी वेश में व्यक्ति है, वो तुम्हारे पास कल आएगा, तुम्हारे चरणों में गिरेगा और तुम्हें दीक्षा, तुम क्या करो उसे दीक्षा प्रदान करो और दीक्षा में यह मंत्र दे दो। तो बलराम मंत्र किसके कारण में बोलते हैं, लक्ष्मी तीर्थ के। तो दूसरा दिन जब उदित होता है तो ये नित्यानंद प्रभु आते हैं घूमते हुए है, किसके पास, लक्ष्मी तीर्थ के पास, और स्वयं भगवान है बलराम है आकर उनके पास कहते कि हे लक्ष्मी तीर्थ आप मुझे दीक्षा प्रदान करो। तो भगवान को कोई नीड नहीं है दीक्षा की या शिक्षा की, इसलिए कृष्ण भी किसके पास जाकर सीखते हैं, सांदीपनि मुनि के पास, ये सिखाने के लिए कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन कंटिन्यू करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसी कारण से गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने बोला तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप यदि भगवान के परम नॉलेज को जानना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, विधि, तद विधि, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। क्या है प्रोसेस, तद विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले निपात सरेंडर होना होगा, प्रणाम करना होगा उस सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति को। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा का एटीट्यूड अपने हृदय में धारण करते हुए क्वेश्चन पूछना होगा, यानी चैलेंज के साथ, या देखते हैं ये कितना जानता है, कई बार होते ना हम तो इससे हम स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको गेन नहीं कर सकते। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा भी करनी होगी। तो क्या होगा, पूर्ण जो आध्यात्मिक नॉलेज है, ज्ञान है, हम अपने हृदय में अवगत करते हैं, हमारे लिए सरल हो जाता है ये सारे शास्त्र। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करते हैं केवल हमें सिखाने के लिए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गीता की शुरुआत ही होती है दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, अर्जुन कृष्ण को कहता है कृष्णा शिष्यस्ते हम स्यादि माम त्वं प्रपन्नम्, प्रपन्नम मीन्स आपका शरणागत हूं, आप मेरे क्या हो, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरते हैं और लक्ष्मी तीर्थ उन्हें दीक्षा देते हैं उस पंढरपुर स्थान में, और नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं। आगे जाकर वो साउथ इंडिया में आते हैं, दक्षिण भारत में, और यहां जब लक्ष्मी तीर्थ उस रात्रि में सो गए हैं तो उन्होंने स्वप्न देखा, लेकिन आज बलराम नहीं थे, आज कौन आए थे? नित्यानंद प्रभु स्वप्न में। वो बलराम भी आए हैं और बलराम परिवर्तित हो गए, किस रूप में? नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे नित्यानंद बलराम का स्मरण करते हुए कुछ ही दिनों में लक्ष्मी तीर्थ अपना शरीर त्याग देते हैं और नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में उडुपी के पास एक स्थान में माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं, जो इस संप्रदाय के सबसे पहले डिवोटी हैं। हमारा जो इस्कॉन आंदोलन है ये ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में है, मध्वाचार्य से ये परंपरा एक प्रकार से शुरू है। ये जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु इसकी तुलना करते एक वृक्ष से, और एक चैतन्य वृक्ष है लेकिन उसकी जड़ कौन है? माधवेंद्रपुरी नाम के जो डिवोटी है जिन्होंने इस संप्रदाय में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेममय भावना को उदित किया। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी को नित्यानंद प्रभु मिलते ही वो कहते हैं कि मैं तो 20 साल से भ्रमण किया हूं लेकिन किसी भी आप जैसे भक्त को नहीं मिला मैं, अब मेरा भ्रमण सफल हो गया आप जैसे भक्त को मिलकर और आप जैसे भक्त का दर्शन करके। नित्यानंद प्रभु उनको आलिंगन करते हैं और आलिंगन करते ही दोनों मूर्छित हो जाते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते कि आप मेरे गुरु हो। तो नित्यानंद प्रभु उनसे शिक्षा स्वीकार करते थे माधवेंद्रपुरी से। तो नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते फिर से वृंदावन आए, वृंदावन में भ्रमण किया और मथुरा के पास एक स्थान है रामघाट। रामघाट वो स्थान है जहां बलराम ने गुस्से में आकर यमुना को क्या किया था, अपने हल से खींच लिया था। आज भी आप वहां जाते हैं तो यमुना का प्रवाह ऐसा खींचा हुआ है, टेढ़ा है। तो रामघाट में आकर नित्यानंद प्रभु रोने लगे। उन्होंने कहा, हे परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आप कब ये जो संकीर्तन आंदोलन है उसको शुरू कर रहे हो? इस पति इस संसार में जो बद्ध जीव है उनके ऊपर कब हरि नाम का आप वर्षा कर रहे हो? कब इनको हरि नाम प्रदान करोगे? आप जल्दी शुरू कीजिए, मुझे रोका नहीं जा रहा है अपने आप को, मैं आना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हो गए थे वहां नवद्वीप मायापुर में। तो नित्यानंद प्रभु को पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आकर नवद्वीप मायापुर में सबको कृष्ण भक्ति वितरण कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु फिर वृंदावन छोड़कर कहां चले जाते हैं? मायापुर नवद्वीप जाते हैं। तब उनकी आयु 32 साल की थी। 12 साल की आयु में उन्होंने ग्रह छोड़ा था, 20 साल उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया। जब 32 साल की आयु थी तो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन ज्वाइन किया उन्होंने मायापुर में और इसका प्रचार करना शुरू किया। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के बारे में कई सारी चीजें वर्णित की जाती हैं। तो नित्यानंद प्रभु वो परम करुणामय अवतार है जो मार खाय प्रेम दे दयालु तो नहीं है, जो मार खाते हैं लेकिन दूसरों को क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। तो फेमस है जो जिन्होंने ऐसे दो महादस्यु सबसे अधिक पापी तापी व्यक्ति का उद्धार किया, ऐसे दो व्यक्ति थे जगाई और मधाई, जिनका पहले नाम था ब्राह्मण परिवार में जगदानंद और माधवानंद। लेकिन उनके कार्यों के कारण नवद्वीप में इतना पाप, ऐसा एक भी पाप नहीं था जिन्होंने नहीं किया हो। तो इतने पापी व्यक्तियों को जो उद्धार है वो नित्यानंद प्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दिन ऑर्डर देते हैं, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास अमर आज्ञा तुम्हें कर प्रकाश प्रति घरे घरे गया। तो कहते हैं कि हे नित्यानंद हे हरिदास मेरी ऑर्डर को सुनो, हर घर घर में जाओ और एक शिक्षा दो। कौन सी शिक्षा? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण की शिक्षा का आचरण करो, ये सबको जाकर दो। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में सारे लोगों को जाकर ये शिक्षा देते थे, कई लोग उनको भगाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा ये दो पियक्कड़ आ रहे हैं वहां से, उन्होंने पूछा ये कौन है। नित्यानंद प्रभु की दृष्टि जब गई तो उन्होंने पूछा ये कौन है। कुछ लोगों ने कहा इनसे बढ़कर पापी कोई नहीं है। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये लोग भक्त बन जाएंगे ना तो सबसे अधिक ग्लोरीज किसकी फैलेगी, तो वो चैतन्य महाप्रभु की। किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। ये है सेवा। किसकी ग्लोरी? जैसे प्रभुपाद है, बाकी जितने भी गुरु आए हैं इस संसार में, जितने भी सो कॉल्ड गुरुज हैं, वो सब जगह कुछ प्रोग्राम भी हो तो अपने फोटो अंकित होते हैं, या अपना नाम सारे जगत में फैलाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने किसकी ग्लोरीज बढ़ाए? कृष्ण की। इसलिए इनके आंदोलन को लोग हरे कृष्ण आंदोलन कह के पुकारते हैं। क्या इनके डिवोटी जा रहे होंगे तो कहेंगे हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने सोचा ये जगाई मदाई जो सबसे अधिक घृणित है, पापी है, इनका उद्धार होगा तो चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है वो बढ़ेगी, और उनका ये जो नाम है पतित पावन ये सार्थक होगा। इसलिए हमें इनको अप्रोच करना होगा। तो जगाई मदाई को अप्रोच करते हैं, वो तो पेयर करते हैं, वो ये नित्यानंद प्रभु जाकर सीधा बोलते हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जैसे कृष्ण का नाम सुना वो दोनों जगाई मदाई खुमकार पागल की तरह उनके पीछे लगे मारने के लिए, ये दौड़ने लगे। और हरिदास ठाकुर कहते कि नित्यानंदा तुम्हारे साथ रहूंगा तो रोज मुझे मरना ही पड़ेगा। जिनको प्रचार नहीं करना चाहिए उनको प्रचार करते हो, तो फिर वो जाते ही दोनों चैतन्य महाप्रभु को ये न्यूज देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा रोज तुम दोनों बाहर जाओ, लोगों को प्रचार करो, और जो भी दिन में घटित होगा शाम को आकर मुझे रिपोर्ट दो। और उनका ऑफिस क्या था? श्रीवास ठाकुर का घर आंगन। तो जब नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को बोला तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कौन है, तो दो डिवोटीज ने पूरा हिस्ट्री बता दिया, श्रीवास ठाकुर ने और गंगादास ने, उन दो व्यक्तियों का। फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु अकेले जा रहे थे और अचानक ये दोनों सामने आ गए। जगाई मदाई ने पूछा अरे रुक तुम्हारा नाम क्या है? नित्यानंद प्रभु कहते मेरा नाम अवधूत है। क्या है? अवधूत। अभी उसको लगा सरल सरल नाम नहीं बताता है, तो जगाई को इतना गुस्सा आ गया, एक मिट्टी का पात्र उठाता है, ठक करके उनके सर में मार देता है, और नित्यानंद प्रभु के सर से ब्लड निकलने लगता है। नित्यानंद प्रभु कहते अरे कृष्ण तो हो कृष्ण, फिर भी मार लगी हुई है लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? कृष्ण का उच्चारण करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। तो मधाई को बहुत गुस्सा आ गया, दूसरा मिट्टी का पात्र उठाया सर में मारने के लिए, तो वह जगाई ने रोका, हाथ पकड़ा रहे रुको, ये सन्यासी को इतना सरल है जो कृष्ण का लाभ लेने के लिए हमें कह रहा है, उसको मारने से क्या तुम्हारा भला होगा। वो रुक जाता है और जगाई उनके चरणों में गिरकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु को ये न्यूज मिलती है, चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होते हैं, और कैसे प्रकट होते? बहुत गुस्से में चक्र चक्र कहकर, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, उनके हाथ में चक्र, वो कृष्ण है, चक्र घूमने लगा तो जगाया और मधाई के 12 बजने लगे। उन्होंने सोचा अभी तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं, कहते हैं कि आपका अवतार तो पतित जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है, उनको मारने के लिए नहीं। तो इस अवतार की खासियत क्या है? ये अवतार जो हृदय में आसुरी भावना है, पाप करने की जो प्रगाढ़ प्रवृत्ति है, वासना है, उसको काटता है, हृदय रोग को क्या करता है? काटकर फेंक देता है। ये अवतार चैतन्य महाप्रभु का, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, आप इनको नहीं मारो। उन्होंने कहा आपको तो, आप मेरे प्राण हो, आपका उन्होंने ब्लड निकाला है, कैसे मैं रोक सकता हूं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ये जो जगह है ना, उसने मुझे बचाया है। तो चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते ही जगाए कृष्ण प्रेम के जो विकार है प्रकट करने लगता है, और मधाई की ओर गुस्से से देखते हैं। तो मधाई कहते हैं मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो मधाई को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हें नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरना पड़ेगा, उनके प्रति तुमने भयानक अपराध किया है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको क्षमा करते और कहते हैं फिर से ऐसा पापमय कार्य मत करो, अपने पापमय कार्य को त्याग दो। तो जगाई और मधाई को वो स्वीकार करते हैं नित्यानंद प्रभु, और इतना अधिक पापमय कार्य था इन दोनों का, जब इन दोनों का उद्धार हो गया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों के बीच में आकर ये जोर जोर से हरे नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा जोर से,
हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
जब ये जोर जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अत्यधिक पाप है मधाई के पास। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं तुम्हारे सारे पापों को ग्रहण करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु उसका आलिंगन करते हैं, जैसे मधाई का आलिंगन करते हैं चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण है उनका शरीर काला हो जाता है। कहते देखो मैंने क्या कर लिया, तुम्हारे सारे पापों को स्वीकार किया है, अभी फिर से अनाचार मत करो, पाप मत करो। तो उसी प्रकार से है गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो दीक्षा लेते तो हम क्या करते हैं, गुरु सारे हमारे भौतिक जो पाप है उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें वचन देते हैं कि फिर से मैं पापमय कार्य नहीं करूंगा, तभी हम कृष्ण की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से कई सारी दिव्य लीलाएं हैं मधुर, जिनका श्रवण और जिसका वर्णन दोनों हमारे पापी हृदय को शुद्ध करने वाला है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु परम दयालु परम करुणामय अवतार है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के हम शरण ग्रहण करते हैं, जो कलयुग में परम करुणा बहुदई जन निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद गंगा। तो इनके संरक्षण में होते हैं और इनके संरक्षण में रहकर कृष्ण नाम का उच्चारण करते गंभीरता से। और दूसरी चीज क्या करते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को प्रसन्न करना है तो व्यक्ति को दो कार्य करने पड़ेंगे। एक कार्य क्या कि जो परम जो भेंट है लेकर आए हैं ये दोनों, और वो गिफ्ट क्या है, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन से ये दोनों जब इस धराधाम में अवतरित हुए तो वो प्रेम धन लेकर आए, हरि नाम संकीर्तन। ये कृष्ण कीर्तन ये प्रेम नाम संकीर्तन है, जब हम इसका जप करते हैं उच्चारण करते हैं तो ये प्रेम दिए बिना हमें छोड़ेगा नहीं। तो इसको स्वयं ग्रहण करना है तब हम कृपा प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्या है, चैतन्य महाप्रभु की ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हैया तार ही देश। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कहा गुरु बनो, जिसको भी मिलोगे जिसको भी देखोगे उसको कृष्ण का उपदेश दो, कृष्ण के बारे में बताओ, उसके जीवन सफलता किस में है, सिद्धि क्या किस चीज में है, उसका वर्णन करो। तो ये दो चीजें हम करते हैं, स्वयं कृष्ण नाम लेते हैं और दूसरों को प्रेरित करते कृष्ण नाम लेने के लिए। तो हम वास्तव में गौर और नित्यानंद के कृपा पात्र बनते हैं, और यही वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने किया, और यही वास्तव में श्रील प्रभुपाद हमसे करने की अपेक्षा रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के श्री श्रीताय गौर सुंदर के श्रील प्रभुपाद के श्रीताय गौर प्रेमानंदे। तो किसी की कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।